सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात के स्वर्णिम 11 वर्ष।
3 अक्टूबर 2014 भारत के इतिहास का वो महत्वपूर्ण दिन जब देश के प्रधानमंत्री ने जनता के साथ जुड़ने की अनूठी पहल की और मंच बनाया आकाशवाणी को।
मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूँ।
वर्ष 2014 से पहले शासन और आम जन के बीच संवाद की जो कमी थी उसे पाटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के रूप में संवाद की एक नई श्रृंखला का स्वरूप देश के समक्ष रखा।
मैं कोशिश करूंगा, हो सके तो महीने में दो बार या तो महीने में एक बार समय निकाल करके आपसे बातें करूं। आगे चल करके मैंने ये भी मन में सोचा है कि जब भी बात करूंगा तो रविवार होगा और समय प्रातः 11 बजे का होगा।
आज इस संवाद की 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम मन की बात की पिछले 11 वर्षों की यात्रा का स्मरण करेंगे, जानेंगे कि वो कौन से प्रमुख अवसर थे जब प्रधानमंत्री ने देशवासियों से मन की बात की और देशवासियों ने अपने प्रधानमंत्री से। ये कार्यक्रम वो मंच भी बना जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री ने कई जन आंदोलनों का आह्वान भी किया। आकाशवाणी पर मन की बात के अपने पहले ही एपिसोड में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि मन की बात की ये श्रृंखला लंबी चलने वाली है। आज 11 वर्ष बाद भी मन की बात का ये सिलसिला अनवरत जारी है।
मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया।
अपने पहले ही एपिसोड से मन की बात जन जन की बात बन गई। मन की बात के अपने शुरुआती दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से खादी को अपनाने की अपील की थी।
खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है। और मैंने देखा कि इन दिनों खादी के प्रति काफी रुचि बढ़ी है। और मैंने स्वाभाविक रूप से कहा था कि मैं कोई खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन भांति भांति के फैब्रिक होते हैं तो एक खादी क्यों ना हो। घर में चादर हो, रुमाल हो, कर्टेन हो। अनुभव ये आया है कि युवा पीढ़ी में खादी का आकर्षण बढ़ गया है, खादी की बिक्री बढ़ी है और उसके कारण गरीब के घर में सीधा सीधा रोजगारी का संबंध जुड़ गया है। 2 अक्टूबर से खादी में डिस्काउंट दिया जाता है, काफी छूट रियायत मिलती है। मैं फिर एक बार आग्रह करूंगा, खादी का जो अभियान चला है उसको हम और आगे चलाएं और बढ़ाएं। खादी खरीद करके गरीब के घर में दिवाली का दिया जलाएं, इस भाव को लेकर के हम काम करें। हमारे देश के गरीब को इस कार्य से एक ताकत मिलेगी और हमें करना चाहिए। और इस खादी के प्रति रुचि बढ़ने के कारण खादी क्षेत्र में काम करने वालों में, भारत सरकार में खादी से संबंधित लोगों में एक नए तरीके से सोचने का उत्साह भी बढ़ा है।
प्रधानमंत्री के इस आह्वान का असर ये हुआ कि देखते ही देखते ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। दशकों से उपेक्षित रही खादी की बिक्री में अभूतपूर्व उछाल आया। खादी ने हमारे स्वदेशी वस्त्रों के प्रति एक नया गौरव का भाव जगाया। खादी के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई, जिसका सीधा लाभ लाखों बुनकरों और कारीगरों को मिला, खासकर ग्रामीण इलाकों में। ग्रामीण कारीगरों से लेकर उच्च स्तरीय फैशन डिजाइनरों तक खादी रचनात्मकता और आर्थिक सशक्तिकरण का एक माध्यम बन गई। एक ऐसा समय था जब हमारे बाजार आयातित खिलौनों से भरे होते थे। मन की बात में प्रधानमंत्री ने देशवासियों का ध्यान हमारी खिलौना निर्माण की समृद्ध विरासत की ओर आकर्षित किया और देशवासियों से स्वदेश में निर्मित खिलौने खरीदने की अपील की।
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। गृह उद्योग हो, छोटे और लघु उद्योग हो, एमएसएमई हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। अभिनव जी को अपनी रिश्तेदारी में बच्चों को गिफ्ट देने के लिए कुछ खिलौने खरीदने थे, इसलिए वो दिल्ली की जन्नेवालान मार्केट गए थे। अभिनव जी ने चिट्ठी में लिखा है कि अब वहां के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल बोलकर टॉय बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉय है, क्योंकि ये भारत में बना है, मेड इन इंडिया है। कस्टमर्स भी इंडिया मेड टॉयज की ही मांग कर रहे हैं। यही तो है ये सोच में कितना बड़ा परिवर्तन।
प्रधानमंत्री की ये अपील केवल खिलौनों को देश में ही बढ़ावा देने के लिए नहीं थी, बल्कि हमारे परंपरागत खिलौना उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए भी थी। प्रधानमंत्री की अपील के बाद भारतीय खिलौना उद्योग एक बार फिर से खिल उठा है। मन की बात नवाचार और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने का सशक्त मंच भी बना। प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर युवा उद्यमियों और स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं की प्रेरक कहानियां साझा की।
आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना, अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना। जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है, प्रत्येक देशवासी जुड़ता है, तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है। जब आसमान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को कलाबाजियां खाते देखते हैं, जब भारत में बने टैंक, भारत में बनी मिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाते हैं, जब समृद्ध देशों में हम मेट्रो ट्रेन के मेड इन इंडिया कोचेज देखते हैं, जब दर्जनों देशों तक मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को पहुंचते ही देखते हैं, तो हमारा माथा और ऊंचा हो जाता है। और ऐसा ही नहीं है कि बड़ी बड़ी चीजें ही भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। भारत में बने कपड़े, भारत के टैलेंटेड कारीगरों द्वारा बनाया गया हैंडीक्राफ्ट का सामान, भारत के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भारत के मोबाइल, हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा। जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। और साथियों, मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत का ये मंत्र देश के गांव गांव में पहुंच रहा है।
इस तरह प्रधानमंत्री के आह्वान से देश के अनगिनत युवाओं को अपने उद्यमशीलता के सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन मिला। इसी का परिणाम है कि आज हमारा देश स्टार्टअप के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है।
कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, हर एक जगह देश सेवा का बहुत स्कोप होता ही है। देश की आवश्यकता को समझते हुए जो भी कार्य करते हैं वो देश की सेवा ही होती है। आपकी यही सेवा देश को कहीं न कहीं मजबूत भी करती है। और हमें ये भी याद रखना है, हमारा देश जितना मजबूत होगा दुनिया में शांति की संभावनाएं भी उतनी ही मजबूत होगी।
उत्पादों और उद्योगों के अलावा मन की बात जन भागीदारी के आह्वान का भी मंच बना। जल शक्ति अभियान और अमृत सरोवरों के निर्माण जैसी पहलों के माध्यम से जल संरक्षण की अपील को देश ने विशाल जन आंदोलन में बदलते देखा। इसी तरह प्रधानमंत्री ने समय समय पर मन की बात के माध्यम से देशवासियों से स्वच्छ भारत मिशन का भी आह्वान किया। स्वच्छता के इस अभियान ने न केवल जन स्वास्थ्य में सुधार किया बल्कि अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी खोले। बीते 11 वर्षों में मन की बात ने देश के कई ऐसे गुमनाम नायकों को सामने लाने में अपनी भूमिका निभाई है जो अपने स्तर पर देश को समृद्ध बनाने में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम ने उन सामान्य नागरिकों की असाधारण कहानियों को सामने लाने का काम किया है जो समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। शिक्षा, पर्यावरण, समाज कल्याण और नवाचार जैसे क्षेत्रों में निरंतर लगे ये लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं।
साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा, हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
अभी आप सुन रहे थे मन की बात के स्वर्णिम 11 वर्ष। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
सुर्खियों में